Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ve la khatamun nebiyyin amma ba'd. Fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'in amanu bi misli ma'mantum bi fekadih tadavu ve entevallu fennum fi şikak ve sekfikumullahu semil alim. Ve kâle aleyhissalatu vesselamu ashabikan necum bi ayyye muktedetum ehtedetum sadakallahu l'alihul azim ve sadakallahu nebil kerim. معزز خواتین و حضرات، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اللہ تعالیٰ ان کو درجات عظیم عطا فرمائے، ان نے ہمیں ایک صحیح راستے کی طرف رہنمائی کے لیے بہترین اصول بیان فرمائے ہیں. واقعی اس دور کو جو کہ دور فتن ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہو جائے تو انسان فتنے میں گر سکتا ہے. ہم جانتے ہیں بعض پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف پہاڑ ہوتا ہے، دوسری طرف بہت گہری کائی ہوتی ہے، اور اس پہ جب چلنا ہوتا ہے، بعض دفعہ گاڑی میں چلنا ہوتا ہے، بعض دفعہ پیدل چلنا ہوتا ہے، راستہ تنگ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان پونگ پونگ کے قدم اٹھا رہا ہوتا ہے کہ ذرا بر لغزش جو ہے وہ انسان کو بالکل ہی بہت مطلب جو ہے بہت گہری کائی میں گرا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے مطلب ریزے ریزے کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے آج کل کے دور میں ہمیں یعنی اپنے عقائد کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے فکر کے بارے میں فکر کرنی کہ ہم کون سی چیزیں سوچ رہے ہیں، کون سی چیزیں نہیں سوچ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اس وقت بہت زیادہ اہم ہو گئی ہیں. اس وجہ سے اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہوں ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. چونکہ امت مسلمہ کی جو بنیادی مطلب جو یعنی امتیازی مقام ہے وہ یہ ہے کہ حق پر ہے، اور حق صراط مستقیم پر چلنے والا ہوتا ہے، اور صراط مستقیم سے ذرا بر بھی دائیں بائیں جو بھی ہوتا ہے وہ حق پر نہیں ہوتا. یعنی حق وہی ہوتا ہے کہ بالکل یعنی سیدھے راستے پر انسان جائے. اگر تھوڑا سا بھی دائیں طرف بھی ہٹ جائے تو تب بھی اپنے راستے سے ہٹ جائے گا، بائیں طرف ہٹ جائے تب بھی اپنے راستے سے ہٹ جائے گا، اور اوپر جائے گا تو تب بھی. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ اس سے ذرا بر بھی آگے پیچھے نہ ہو. تو اس وجہ سے افراد تفرید سے بھی بچنا ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ جو غلط سمجھنا ہے اس کو اس سے بھی بچنا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو پڑھی ہی رہیں یعنی اس دور کے لوگوں پہ، تو اس کا بعض دفعہ پتہ ہی لیٹ چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک بہت شاطر آدمی ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے پتہ نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے، این بالکل اخیر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس نے تو ہمیں گمراہ کر دیا، تو ہمیں بہت دور لے گئے. تو اس وقت ظاہر مطلب یہ ہے کہ کوئی معیار ایسا ہونا چاہیے کہ اس معیار کے اوپر ہم سب کو پرکھیں، کہ اس معیار سے اگر کوئی ہمیں اٹھا رہا ہے تو پھر ہم لوگ الرٹ ہو جائیں، اور ظاہر اس کے پیچھے ہم نہ جائیں، اپنے آپ کو اس سے بچا لیں. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے، جس کی حفاظت کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اور یہ بہت بڑے چیلنج ہے اسلام کا باقی لوگوں کو کہ اس طرح کوئی صورت بنا کے لے ہو، اگر تم بنا سکتے ہو اس کو، اگر وہ نہیں سمجھتے ہو. تو یہ اللہ جل شانہ نے اس کی جو حفاظت فرمائی ہے، اس بنیاد پر ہم ہر وقت قرآن پاک سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہدایت کا پورا نظام ہے، جیسے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کو ایمان حاصل ہوگا، ایمان بالغیب اس کسی کو حاصل ہوگا. اگر ایمان بالغیب کسی کو حاصل نہیں ہوگا تو قرآن سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. हाँ जी, इस वजह से इसके आगे आ रहे हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन यूमिनून बिलगैबी व यकीमून अस्सलात व मा रज़क़हुम युन्फिकून वल्लज़ीन यूमिनून बिमा अुनज़िला अलैक व मा अुनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िर। थोड़ा सा ज़रा इसमें एक और बात भी, अच्छा अल्लाह ताला ने अभी दिल में बात डाली है, अजीब व गरीब बात है जिसकी तरफ पहले कभी जहन नहीं गया था, वो ये है कि इसमें सिर्फ ईमान की बात नहीं की गई है। यूमिनून बिलगैब ये तो है, बुनियाद है, लेकिन इस पे बात छोड़ी नहीं है। हाँ जी, एक ये भी बात फरमाई, युकीमुन अस्सलात व मिम्मा रज़क़हुम युन्फिकून। इसमें क्या बात है, वाकईतन मेरा कभी जहन इस तरफ नहीं गया था पहले। उसमें ये बात है कि बास फलसफी लोग बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ऐसी गहरी गहरी बातें करते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन न वो नमाज पढ़ते, न वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ चंद फलसफों की बातें होती है। आजकल इस किस्म की बातें, मतलब एक शख्स था, वो इस किस्म के शख्स के पास चला गया था और उनसे बड़ी डिस्कशन की थी और ये और वो, लेकिन जब मगरिब की नमाज का वक्त आ गया तो उनके पास नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं थी, सारे इधर उधर बुत थे, वो नहीं होते जो कांच के बुत होते। हाँ जी, वो हैरान था कि मैं नमाज कहाँ पढ़ूँ। उससे कहा नमाज पढ़ना है, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, उसको एक जानमाज दे दी, खुद नहीं पढ़ी। हाँ जी, और जानमा उसको जानमाज डालने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अब ये क्या फलसफा है, ये कौन सी चीज़ है? तो आजकल इस किस्म के लोगों की भी मरमार है, जो बातें बहुत ऊंची ऊंची करते लेकिन अमल से बिल्कुल ही फारिग होते हैं। तो पता चल गया कि जिस अकीदे ने, जो वो बयान कर रहा है, जो त्यूरी वो बयान कर रहा है, जो बड़े बड़े फलसफियाने बातें वो बयान कर रहे हैं, अगर उसने उसमें इतनी तब्दीली भी नहीं पैदा की कि वो कम अज़ कम ये बुनियादी बात जो हमें नमाज है और ज़कात है, अगर इस तरफ भी वो नहीं ला सका, तो इसका मतलब है कि वो सारी बातें महज सतही बातें हैं। मतलब वो जो है ना, वो उसका यकीन उस पर नहीं है। युमिनून बिलगैब और बिल आखिर तुम युकिनून, युमिनून से शुरू है और युकिनून पे ख़त्म है, युमिनून से शुरू है युकिनून पे ख़त्म है। हाँ जी, तो अब ये है कि उसका यकीन नहीं है, वो बातें तो करता है लेकिन उस पर उसको यकीन नहीं है। अगर उस पर उसको यकीन होता तो जाहिर है मतलब है कि वो कम से कम उस पर अमल करता। तो ये कम से कम ये पारा जो है, ये जो रुकू है, हमें उन लोगों से बचा रहा है जिनका ईमान ना हो। हाँ जी, और जिनका ईमान का वो दावा तो हो लेकिन जिनका यकीन ना हो, आमाल की तरह बिल्कुल नहीं जाते हो, तो बहरहाल ऐसे लोगों से हमें अल्लाह ताला बचा रहे बिल्कुल इब्तदाई में। तो एक बात तो है कि कुरान पाक के जरिए से अल्लाह ताला हमें बचाता है, लेकिन कुरान पाक की तशरीह हर एक अपनी मर्जी से कर सकता है। हजरत अली करम अल्लाह वजू, जिस वक्त उन्होंने खवारिज के साथ बात करने के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रतलों को भेजा, तो उनको ये नसीहत फरमाई कि इनके साथ कुरान पे बात न करना, इनके साथ हदीस रसूल पे बात करना, क्योंकि कुरान में अपनी तरफ से बातें बनाएंगे। और आज हम देख रहे हैं, यानी आजकल जो मुनकरीन हदीस है उनके पास, यानी मतलब वो उनका गोया हथियार ही कुरान है, वो कुरान के जरिए से लोग गुमराह कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि कुरान से हदीस को काट लिया, अब उनकी मर्जी कि दिल्लु भी कसीर व यहदी भी कसीर। कुरान खुद कहता है कि कुरान जो है ना, वो मतलब बहुत सारे लोगों को इससे हिदायत मिलती है, बहुत सारे लोगों से गुमराह होते हैं। तो गुमराह कैसे होंगे अगर उन्होंने वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर है और सहाबा किराम का जो तफसीर है, अगर उससे हटके मतलब जो है ना किसी ने कर लिया तो गुमराही है। और ये गुमराही किस जरिए से होगी? ये गुमराही तो कुरान पाक के जरिए से होगी, और बड़ी गहरी गुमराही होगी। हाँ जी, तो ऐसी सूरत में अब जैसे गामदी है, वो गामदी यही करता है, गामदी के पास जरिया यही है, मतलब वो जो है ना वो यही करता है कि वो जो है ना वो कुरान की बातें करता है और हदीस शरीफ से उसको, और आसान से इतनी आसानी से कह देता है। ये सिर्फ उस वक्त का रिवाज की बात थी, इसका कुरान के साथ, कुरान देखो कुरान पाक में नहीं बताया गया। और जो मतलब यह कि उस चीज़ से इंसान को काट देता है, यानी तमाम वो चीज़ें कि अपने ऊपर लाते हैं। हमारे शेख मौलाना शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये परवेज़ के बारे में चूंकि उस वक्त ही बड़ा फितना था, तो हजरत बात फरमाया करते थे, तो हजरत ने एक मौके पे फरमाया, परवेज क्या करना चाहता है? वो ये करना है कि जिस कुर्सी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं, उस कुर्सी पर खुद बैठना चाहता है। जिस कुर्सी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं उम्मत की हिदायत के लिए, उस कुर्सी पर ये खुद बैठना चाहता है। ये परवेज करता है, यानी वो तशरीह कुरान की जो आप सल्लम कर सकते थे वो उसका हक आप सल्लम को नहीं दे रहे, वो जो है मतलब ये कि वो खुद करना चाहते, और यही उसकी ज़ाहिर मतलब गुमराही का बहुत बड़ा जरिया है। लिहाजा जब तक हम हदीस शरीफा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कुरान को नहीं देखेंगे उस वक्त तक हमें कुरान समझ में नहीं आएगा। तो लिहाजा दूसरी चेक जो है ना हमारे पास जो आ गई कुरान के बाद, वो ये कि कुरान को हम लोग गोया कि यूँ समझे उसकी तशरीह हम महदूद करते हैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशरीह किए वो हम मानते, बाकी लोगों की तशरीह नहीं मानते। अगर वो उसके खिलाफ है, अगर उसके खिलाफ है तो फिर हम नहीं मानते। तो ये बात मतलब दूसरी बात हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझने के लिए सहाबा किराम की पूरी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने जो है ना सहाबा किराम की गोया कि इसकी तशरीह के लिए बनाई है। उसकी वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़र्द थे, आप मर्द थे औरत नहीं थे, आप शहरी थे, आप देहाती नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा यानी मतलब उलूम वाले थे, ये अल्लाह ताला जोड़ को दी थी। आप मतलब ये साधारण लोगों में नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आली नसीब वाले थे, वो आम लोगों में नहीं थे। तो आप सल्लम की कुछ तख़सीसात थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बहुत ऊंचा था, तो आम लोग जो है वो कह सकते थे कि हम तो ऐसे नहीं हैं, लिहाजा हम कैसे अमल करें। तो आप सल्लम को एक पूरी जुमात अता फरमा दी गई, और वो जुमात जो है ना उसमें उनकी आप सल्लम ने तरबियत फरमाई और उसको मायार बनाकर पेश किया अल्लाह ताला ने कि देखो जिस तरह इनकी तरबियत हुई थी तुम भी इस तरह बन जाओ। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदू। ये तो ईमान की तरह बात हो गई, ईमान के लिहाज से तो ये बात होगी। सहाबा का ईमान मायार है, वो मान आले व असहाबी ये अमल के लिए भी सहाबा किराम मायार है, अमल के लिए भी सहाबा किराम मायार है। अब इसका मतलब है कि ईमान के लिए भी मायार सहाबा है, अमल के लिए भी सहाबा मायार है। तो अब क्या करें हम, ये करें कि ईमान तो खैर बात बनता ही है ना, क्योंकि ईमान के बगैर तो बात ही नहीं बन। ईमान में तो फ़र्क ज़ाहिर वो सब कुछ ख़त्म कर लेता है, लिहाजा ईमान तो इसमें तो जुज़ भी नहीं है, वो तो पूरा पूरा है। लिहाजा हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जो इरशाद फरमाया अबूबकर का ईमान एक आम गुनहगार ईमान की तरह होता है, उसका मतलब क्या है, हर एक को अपना ईमान अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमान की तरह बनाना चाहिए। ये बात लोग कहते हैं ना कैसे गुनहगार आदमी का ईमान जो है ना मतलब है कि वो अबूबकर, भाई ये बात नहीं है, वो उसमें कोई दरमियान में कोई जुज़ की बात तो है नहीं कि आधा ये ले लो आधा ये ले लो, ये बात तो है नहीं। पूरे का पूरा जब लेना है, और तो पूरे पूरे किसका ले, तो बेहतरीन जो सबसे ज़्यादा इस उम्मत में अफजल तरीन थे बादल अम्बिया, वो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो वो जो ईमान उसका है वो मायार है सब के लिए। इसका मतलब गुनहगार से गुनहगार आदमी भी अपना ईमान वही बनाएगा, ईमान में कोई फ़र्क नहीं है, ईमान में कोई फ़र्क नहीं। क्यों, हम भाई अल्लाह को एक मानते हैं, बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह को एक मानते थे, हम भी आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी मानते थे, हम भी फरिश्तों पर ईमान रखते, और बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी फरिश्तों पर ईमान, मतलब जो भी हमारे ईमानियात थे वो सारे के सारे बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की भी वही थी और हमारे भी वही होने चाहिए। लिहाजा हम दरमियान में कोई फ़र्क नहीं कर सकते। हाँ जी, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद फिर अमल है, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूँ जिस पर मेरे सहाबा चले। इसका मतलब यह है कि अमाल भी उनकी तरह होने चाहिए। अब जब अमाल उनकी तरह होने चाहिए तो इसके लिए हम वक्त के लिहाज से जितने वक्त पीछे जा रहा है उतने फितने बढ़ रहे हैं, उतनी कमज़ोरी आ रही है, उतनी मुश्किलात आ रही है। ऐसे सूरत में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के ज़रिए से हमें वो मुकाम यानी अमलन हासिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो सहाबा किराम का तरीका था उसको हासिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। फिर जितने भी उन तक पहुँचे हम, वो तो अरे की अपनी अपनी बात है, लेकिन मायार हमारे पास चूंकि यही है, अब जब ये वाली बात है तो उसको हम कैसे हासिल कर लें। तो इसके लिए फिर ये बात है कि सबसे पहले हमें वो उन मवाने को उन रुकावटों को दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इस मायार से हट सकते हैं। वो रुकावटें की है, सबसे पहले हमारा नफ्स, हमारा नफ्स जो है ना हमें हटाता है, यानी हम अपनी नफ्स की इस्लाह करेंगे, हम अपनी नफ्स की इस्लाह करेंगे और फिर शैतान से अपने आप को बचाएंगे। ये दो हमारे बहुत मतलब जो है ना वो क्या है, रुकावट है। तो अब नफ्स की इस्लाह करने के लिए पूरा एक निज़ाम है, ये जितना चिश्तिया है, नक्शबंदिया है, सुरवर्दिया है, कादरी है, जितने भी दूसरे सलासल हैं वो यही तो कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या कर रहे हैं, वो यही कि नफ्स का इलाज कर रहे हैं, दिल को साफ कर रहे हैं। अब ये जो चीजें जितने मतलब हम करेंगे तो उतने उतने रुकावटें हमारे दूर होंगे, जब रुकावटें तो उतने उतने हम उस ओरिजिनल तरीके पे आएंगे, ओरिजिनल तरीके के वो जो जो साहब कराम का तरीका है उसके ऊपर हम आ सकेंगे। इसका मतलब है कि जो पहली चीज है यानी अब रुकावटों को दूर करना, वो सैर अल्लाह है, इसको सैर अल्लाह यानी अल्लाह पाक की तरफ जाना, यानी वो चीज़ जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर किए उसको हासिल करने के लिए कदम बढ़ाना, ये सैर मतलब सैर अल्लाह है। तो अब ये जो चीज़ है मतलब उसके लिए तो हमारी मेहनत है, कोशिश है, ये हमारी मेहनत है कोशिश है। जिस वक्त हम इसमें कामयाब हो जाएं तो फिर हम लोग चूंकि वो मवाने दूर हो गए, मवाने दूर हो गए, इसके बाद फिर हमारे पास रास्ता तो वही है माना सहाबी का है। इसके बाद अलावा हमारे पास कोई और तरीका तो है नहीं, तो गोया कि हमने सहाबा के तरीके पर ही जाना है। जब सहाबा के तरीके पर जाए तो ये क्या चीज़ है, ये तरीके साहब है, ये तरीके साहब है। इसका मतलब ये है कि तमाम चीज़ों की जो मतलब वो एक बुनियाद है वो क्या है, वो साहब किराम का तरीका है। हम मगर कह सकते तमाम ईमानों की बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, हम कह सकते तमाम ईमानों की बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने हमें अल्लाह के से बात बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने हमें अल्लाह के बारे में बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने हमें किताबों के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने हमें रसूल के बारे में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने हमें जो है मतलब यानी फरिश्तों के बारे में, मतलब जितने भी ईमानियात है वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। लिहाजा ईमान की ईमानों की बुनियाद क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अमाल की बुनियाद क्या है, सहाबा किराम का तरीका, क्योंकि सुन्नत की तशरीह भी तो सहाबा किराम के जरिए से है ना, सहाबा किराम के अमल के जरिए से सुन्नत की तशरीह है। ये जितने भी हम हदीस शरीफा कहते हैं, हदीस शरीफा क्या है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जमा किया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने देख देख के बताया है। हमारे पास तो फिर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझने के लिए कोई और रास्ता है ही नहीं, नकलन भी और अमलन भी, नकलन भी क्योंकि नकल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किया, और अमलन भी कि देखो ना मतलब यह कि आप सब की किसी कोल का मतलब किया लिया जा सकता है, इस पर अमल किस तरह हो सकता है, हम सहाबा के अमल को देखते हैं, आप सब के सहाबा ने ऐसा किया था, आप सब के सहाबा ने ऐसा किया था, लिहाजा हमारे पास अब इसमें जो है ना फिर ये ठीक है, ये अलग बात है, क्योंकि ये जो दीन है ये माशाल्लाह यानी इसमें जो है ना वो अल्लाह पाक ने आसानी भी रखी है, अल्लाह पाक ने वसअत भी रखी है। अब ये जो वसत है वो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानंद है, इसमें जिसके पीछे भी जाओगे तो हिदायत पाओगे। अब ये जो वसत है ना इसको मुज्तहिदीन इस्तेमाल करते हैं, यही वसत मुज्तहिदीन इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि वो कोशिश करते हैं असल बात तक पहुंचने के लिए, लेकिन असल बात तक पहुंचने के लिए किसी न किसी सहाबी का सहारा लेना पड़ता है, ज़ाहिर है उसके उनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, सहाबी का सहारा लेना पड़ता है। अब सहाबी का जब सहारा लेना पड़ता है तो उनको जहाँ पर भी अपनी बात को समझने के लिए किसी सहाबी का अमल नज़र आता है और उस पर मुतमैन हो जाता है कि ये बिल्कुल, तो बस उनका बस ये उनका मसलक बन जाता है, ये उनका तरीक़ाकार बन जाता है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह भी यही करता है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह भी यही करते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह भी यही करते हैं, मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह भी यही करते हैं, सारे यही करते हैं। इसमें बस हमारे पास गोए कि कानून कैसा बन गया, अजीब गरीब बात है, वो ये है कि अगर सहाबा किराम किसी मसले पे मुत्तफिक है और जमा है, अजमा हो चुका है, इसमें उम्मत में भी इख्तिलाफ नहीं है, वो इमाम हनीफा भी वही बात करेगा, इमाम शाफी भी वही करेगा, इमाम मालिक रहमत भी वही करेगा, मोहम्मद बिन हम्बल और जितने भी फुका है वो सब यही बात करेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कब आएगा, जब सहाबा में इख्तिलाफ होगा, जब सहाबा में इख्तिलाफ होगा तो उसमें उम्मत में भी इख्तिलाफ आएगा। अब उम्मत में जो इख्तिलाफ है, चूंकि हर तरफ सहाबी है, सहाबी के अलावा तो और कोई रास्ता है नहीं, लिहाजा हर तरफ चूंकि सहाबी है, इमाम शाफी रहमत के पास भी सहाबा है, इमाम हनीफा रहमत के पास भी सहाबा है, इमाम मालिक रहमत के पास भी सहाबा है, सबके पास चूंकि सहाबा है लिहाजा है सब हक पर। ये जो बात या सहाबी का नजूम वाली बात है वो चूंकि आप सस्म से साबित है लिहाजा सब हैं हक पर, जब सब हक पर है तो मैंने किसी एक कौल पर ही अमल करना है, मैंने किसी और क्योंकि जाहिर सब पे तो मैं अमल नहीं कर सकूँ एक वक्त में, बस एक के नज़दीक साबित हो कड़ा होना, दूसरे के नज़दीक साबित होना बैठ बैठ जाना। अब मैंने एक वक्त में कड़ा और बैठा तो नहीं हो सकता, कि ये क्या कड़ा होगा या बैठा होगा, बस या फातिह खलफुल इमाम पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, दोनों बातों में से एक ही बात वो कर सकूंगा ना, दोनों बातें बैक वगैरह तो नहीं कर सकता। तो अब मैंने अगर मतलब इमाम शाफी रहमत का कौल ले लिया तो उनने भी कुछ सहाबा से ले लिया, और अगर मैंने इमाम हनीफा रहमत का कौल ले लिया तो उन्होंने भी कुछ सहाबा से ले लिया, अब है तो दोनों ठीक। अब है तो दोनों ठीक, लिहाजा मतलब, लेकिन अगर मैं हनफी हूँ मैं शाफी को गलत नहीं कह सकता, क्यों? उसके वो भी साहबा के पीछे है, और अगर मैं शाफी हूँ तो मैं हनफी को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी खवारिज यही तो गलती करते हैं, खवारिज यही तो गलती करते, सिर्फ अपने आप को सही समझते, किसी और को सही, उसी और को सही नहीं समझते, लिहाजा गुमराह हो गए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि चूंकि सब साहब वो साहब ही के पीछे नहीं चल रहे थे, तभी तो गुमराह हो गए ना। हाँ जी, तो अब ये है कि अगर हम मतलब जाहिर एक तरफ भी जाते हैं साहबा के पीछे, दूसरी तरफ भी जाते हैं साहबा के पीछे था, लेकिन चूंकि हर तरफ साहबा है लिहाजा हम किसी की मुखालिफत नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि हाँ ये तरीका बेटा ये भी, लेकिन मैं ये तरीका इसलिए करता हूँ कि कोई एक ही कर सकता है। अब अपने नफ्स की शर्त से बचने के लिए वो जो एक तरीका है वो इस तरह हो सकता है कि हम किसी एक इमाम के पीछे जाए, क्योंकि हर इमाम साहबा के पीछे, लिहाजा जिस इमाम के पीछे भी हम जाएंगे तो हम लोग हक पर होंगे, ये बात तो साबित हो गया। लेकिन अगर कभी एक इमाम के पीछे कभी दूसरे इमाम के पीछे, यहाँ पर ख़तरा आ जाएगा, और ख़तरा क्या आ जाएगा कि मैं जो सिलेक्शन करूँगा एन मुमकिन है कि नफ्स की बुनियाद पे कर लूँ और नफ्स के पीछे नहीं जाना। तो ये दोनों बातें तब ठीक हो सके, नफ्स के पीछे न जाना और हक के पीछे जाना, तब कि मैं किसी एक ही मुतायन इमाम के पीछे जाना शुरू कर लूँ, दरमियान में आगे पीछे ना हो, दरमियान में आगे पीछे ना हो, बस एक ही जो है ना, मतलब यह कि मुतायन इमाम के पीछे हूँ बस। जैसे चार बसें जा रही हैं लाहौर जा रही हैं, आप किसी भी एक बस में बैठ जाए पहुँच जाएंगे ना, क्या ज़रूरी है कि भाई गुजर खान में दूसरे बस में बैठ जाओ, फिर आगे गुजरात में तीसरे बस में बैठ जाओ, फिर आगे जाके गुजरावाले में चौथी बस में बैठ जाओ, ये कोई करता है? बस चारों बसें जब जा रही हैं, मतलब लाहौर जा रही है, तो मैं किसी बस में बैठ जाऊंगा तो बस वो ठीक है, मतलब जा रही के मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा, तो बस किसी एक के पीछे रवाना हो जाओ, किसी एक के पीछे चलो और आखिर तक उसी के पीछे ही चलो, बाकियों को गलत ना कहो। तुम एक बस में बैठे हो तो दूसरे बसों को ना समझो कि वो पेशावर पहुंच जाएगा कि कराची पहुंच जाएगा, नहीं सारे लाहौर ही पहुंच रहे हैं, सारे लाहौर ही पहुंच रहे हैं। हमारे एक माशाल्लाह साथी है, उनके पास कुछ लोग आए, उनको ज़रा अपने रास्ते की तरफ दावत देना चाहते थे, उनका रास्ता भी ठीक था, गलत तो नहीं था, लेकिन वो समझते हैं कि सिर्फ हमारा ही तरीका ठीक है और ये तरीका गलत है, तो उनको दावत दे रहे थे। उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनकर कहा कि माशाल्लाह बिल्कुल हक पर है, इंशाल्लाह आप भी एक बस में बैठ गए, इंशाल्लाह अपनी जगह पहुंच जाएंगे, मैं भी दूसरी जगह बस में बैठ गया हूँ, वो बस भी उधर ही पहुँचने वाली है, इंशाल्लाह मैं भी पहुँच जाऊँगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें। उसने अपने आप को माशाल्लाह बहुत आसानी, बस यही बात है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर बहुत आसान है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। वाखिर दावान अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन, अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबी, अल्लाहुम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका तुव्वाबुर रहीम, वसल्लल्लाहु तआला